ओम शांति। 14 मार्च 1982। आज तो सिर्फ शहर समाचार सुनाया, अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे हैं। आजकल जो बात होती है तो कहते हैं 100 वर्ष पहले भी हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही है, क्योंकि यह विचित्र बाप को प्रत्यक्ष करेगी। सबके मुख से अभी यह आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। यह क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर यही बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है, तो यह क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है, चारों ओर अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? कौन से मक्खन को? प्रत्यक्षता के। तैयार हो खाने के लिए सभी आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 1982। आज तो सिर्फ शहर समाचार सुनाया, अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे। आजकल जो बात होती है तो कहते हैं 100 वर्ष पहले भी हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही है, क्योंकि यह विचित्र बात को प्रत्यक्ष करेगी। सबके मुख से अब यह आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। यह क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया। अब फिर यह बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे कौन सा उदाहरण दिया बाबा ने, मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले क्या होती है, हलचल, और बाद में मक्खन निकलता है। तो यह क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है, चारों ओर अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाला कौन? तैयार हो खाने के लिए सभी आप फरिश्तों का क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। एक है याद और दूसरा है आह्वान, दोनों में क्या भेद है? संडे की अव्यक्त मुरली संदेश गुलजार दादी के द्वारा, दादी बाबा से कहती है, बाबा बच्चे आपको याद कर रहे हैं और आपका आह्वान भी कर रहे हैं। एक है रिमेम्बरेंस, एक है इनवोकेशन। तो याद और आह्वान में क्या अंतर है? और याद करना मतलब स्मृति। याद में, आह्वान में याद भी है प्लस बुलाना भी है। याद में, आह्वान में याद करना भी समाया हुआ है, तो साथ साथ उस व्यक्ति को अपने पास बुलाना, वो पास बुलाने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, दुख भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, प्यार भी हो सकता है। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आबू का तीर्थ तुमको बुलाए, तो वो आह्वान है। देवताओं का आह्वान किया जाता है। आह्वान बहुत ही ऊंचा शब्द है भाषा में। एक है बुलाना, अब बुलाना और आह्वान में क्या अंतर है? आह्वान रिस्पेक्टेड शब्द है और बुलाना अलौकिक शब्द है। आह्वान उनको किया जाता है जो बहुत बड़े हैं, बड़े स्थिति में, बड़े दिव्यता में, अध्यात्म में, पवित्रता में। जो देह के बंधन से परे है, भूत प्रेत वो भी तो देह के बंधन से बाहर है, तो क्या उनका आह्वान करते आह्वान करने को बोला है कि सकाश देने को बोला है? तो प्रत्यक्षता आज इस पर चर्चा करेंगे, रेवलेशन, द डिवाइन रेवलेशन, प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता कैसे होगी, प्रत्यक्षता कब होगी, प्रत्यक्षता क्यों होगी और कैसे कैसे होगी और किन किन की होगी, ये सारे प्रश्न हैं। उससे पहले यहां बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, किसका, मथनी और मक्खन का। दूध जो है सामान्यतः एक दिन टिकता है, कोई फ्रिज नहीं, कोई कुछ नहीं, गर्म नहीं किया तो। यदि उस दूध में एक बूंद दो बूंद छाछ डाल दी जाए तो वो दही बनता है, वो शायद दो दिन टिकेगा, एक दिन ज्यादा। उस दही को यदि मथो तो वो क्या बन जाएगा, मक्खन, वो शायद तीन दिन टिक जाए। यदि उस मक्खन को गर्म कर दिया जाए तो क्या बनेगा, घी, जो कि कभी भी खराब नहीं होता है। क्या होता है घी, छह मास शायद ज्यादा, बहुत लंबा समय, अच्छा घी, प्योर घी, कभी नहीं खराब होता। ज्ञान की एक दो बूंदे यदि डाल दी जाए मन में तो वो क्या बन जाएगा, दही। उस दही को यदि मथो, उस ज्ञान का यदि मंथन किया जाए तो क्या बन जाएगा, मक्खन। यदि उस मक्खन को गर्म करो तो क्या बन जाएगा, घी। कभी न खराब होने वाला व्यक्तित्व यदि बनना है तो ज्ञान और योग की, ज्ञान की बूंदे मन में पड़े, फिर उस ज्ञान की बूंदों का क्या करना, मंथन, चिंतन करना और फिर उसको तपाना। पहले तो ज्ञान बुद्धि में डालना, फिर उसका चिंतन मनन करना और तीसरी अवस्था है फिर उसको योग से तपाना। तो जब वो योग से तपेगा तो कभी न खराब होने वाला व्यक्तित्व निर्माण होगा। प्रत्यक्षता क्यों होगी, क्यों होनी चाहिए प्रत्यक्षता, क्योंकि कल पहले हुई थी। कोई दूसरा उत्तर बताओ, क्योंकि समाप्ति करनी और क्योंकि सबको स्टेज पे आना है और वापस घर जाना है और दुखों का निवारण और हरेक की स्टेज मालूम पड़ेगी और परिवर्तन और ड्रामा समाप्ति की ओर जा रहा है तो हमारा काम पूरा करना है, हमें अपना काम पूरा करना है। चल और
पुकार रहे, उनकी भी तो आश पूरी
करनी, किसके पुकार, पुकार जो भगवान को ढूंढ रहे, पुकार रहे, आह्वान कर रहे हैं, उनकी आश पूरी करने। और प्रभाकर भाई क्यों होनी चाहिए प्रत्यक्षता, बहुत समय से याद कर रहे हैं इसलिए प्रत्यक्षता होनी चाहिए। और वैष्णवी बहन प्रत्यक्षता क्यों होनी चाहिए, सारी संसार की आत्माएं जान जाए उसी को प्रत्यक्षता कहते हैं, क्यों? सस्पेंस ड्रामा है, सस्पेंस थ्रिलर, ये जो मूवी है जबरदस्त सस्पेंस है उसमें, क्या सस्पेंस ही चालू रहेगा? सस्पेंस मूवी जो होती है 5 मिनट लास्ट में क्लाइमेक्स, तब पता चलता है ये था। अगर सस्पेंस ही चालू रहा पूरा 5000 साल के साल, लोगों को पता ही न चले, तो ये ड्रामा कैसा रहेगा? ये मूवी मजा नहीं है इस मूवी में। सस्पेंस थ्रिलर 5000 साल की ये मूवी है, तो इसमें पता तो चलना चाहिए, रहस्य उद्घाटन तो होना चाहिए कि पता ही ना चले कौन था, कैसे हुआ। भगवान नाम एक ये बनकर रह जाएगा, नहीं तो मिस्ट्री, अ मिस्ट्री रैप्ड इन एनिग्मा। एनिग्मा कहते हैं अंग्रेजी में जो चीज समझ में नहीं आती है, पजल, कनंड्रम, ऐसी चीज बनकर रह जाएगा वो 5000 साल के साल कि भगवान है क्या, किसको पता ही नहीं चलेगा। तो रहस्य उद्घाटन होना चाहिए, वो ये एक मुख्य कारण है प्रत्यक्षता का। बाकी आप सबने बताया, प्रत्यक्षता किस विधि से होगी? साक्षात्कार के द्वारा। विधि क्या है? साक्षात्कार। जैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई, उस समय तुम बच्चे भी सहयोगी बने, उस वैसे ही अंत में भी साक्षात्कार में तुम बच्चे सहयोगी बनोगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। प्रत्यक्षता किस किस की? 7 प्रकार की प्रत्यक्षता की हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहली प्रत्यक्षता है भगवान की। दूसरी प्रत्यक्षता है हम ब्राह्मण बच्चों की। तीसरी प्रत्यक्षता है ब्राह्मण परिवार की। चौथी प्रत्यक्षता है यज्ञ की। पांचवी प्रत्यक्षता है मधुबन के इस भूमि की। छठवीं प्रत्यक्षता कौन सी? यथार्थ संपूर्ण सत्य ज्ञान की। 6 हो गए। और सातवीं प्रत्यक्षता वो उसमें आ जाएगा, परमात्मा में। परमात्मा में आएंगे हम, वो हम स्वयं की हमारी जो प्रत्यक्षता है ना, उसमें आएगा। आत्माओं को खुद की प्रत्यक्षता होगी, वो कौन है? वो खुद ही रियलाइज करेंगे हम कौन है, हमारा कौन है, मैं कौन, मेरा कौन। जो दादी अभी यहां कहती है क्लासेस में, वो आत्माएं कहेंगी लास्ट में, मैं कौन और मेरा कौन। तो सबसे पहली जो प्रत्यक्षता है वो किसकी है? भगवान की प्रत्यक्षता। वो कौन है, वो क्या है, वो कब आता है, उसके आने का समय, उसके अवतरण का समय, उसकी तिथि, उसकी तारीख, वो आकर क्या करता है, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका धाम कौन सा है, कर्तव्य क्या है, वो तुम्हारा कौन है, संबंध क्या है तुम्हारा उससे, ये सारी बातें परमात्मा प्रत्यक्षता में आती है। वो कौन है, उसका नाम, रूप, गांव, धाम, कर्तव्य, करता क्या है, कैसे करता है, किस विधि से करता है, सब कुछ, कैसे अवतरित होता है, कब अवतरित होता है, किस में अवतरित होता है, और वो कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है, ये प्रत्यक्षता अंत में होगी। ये पहली प्रत्यक्षता है, परमात्मा प्रत्यक्षता। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है कि वो कब होगा, जिसके उत्तर तो बाबा ने साकार अव्यक्त मूल्यों में दिया है। ऐसे हो जाओगे तो प्रत्यक्षता होगी, तुम संपन्न बन जाओगे तो प्रत्यक्षता होगी, तुम सदैव खुश रहोगे तो बाप की प्रत्यक्षता होगी, तुम्हारे चेहरे पर निरंतर हर्षित मुक्ता रहेगी तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे बहुत सारे साकार अव्यक्त सब वाणियों में महावाक्य आते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा भगवान कितना बड़ा है। तो उसके पिताजी कहते हैं वो देखो आकाश में एरोप्लेन जा रहा है उतना बड़ा। तो वो कहते हैं उतना बड़ा पर वो एरोप्लेन तो बहुत ही छोटा है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो उसके पिताजी उसको एयरपोर्ट हैंगर में ले जाते हैं। एयरपोर्ट हैंगर अर्थात एयरपोर्ट का वह स्थान जहां पर विमान जैसे गैरेज होता है ना, गाड़ियां रुकती है, उसी तरह एयरपोर्ट हैंगर होता है जहां पर एयर फ्लाइट जो उड़ नहीं रही है स्टोर रखी हुई है फ्लाइट्स पार्किंग। हाँ ये बढ़िया बोला पार्किंग। तो एयरपोर्ट हैंगर में दे जाते हैं और उसको कहते हैं ये है एरोप्लेन। तो वो बच्चा कहता है इतना बड़ा। तो वो कहते पिताजी हाँ भगवान भी ऐसा ही है, इट डिपेंड्स ऑन योर डिस्टेंस फ्रॉम हिम। यदि तुम उसके जितने समीप हो उतना वो तुम्हारे लिए बड़ा है, यदि तुम उससे दूर हो तो वो बहुत छोटा है। वो तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा है, वो तुम्हारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है, ये निर्भर करता है कि तुम उसके कितने समीप हो। यदि उसके समीप हो तो वो बहुत बड़ा है, वही सब कुछ है। यदि वो तुमसे बहुत दूर है तो दिखाई भी नहीं देता है, पता भी नहीं चलता है या नहीं है। फिर कौन सा अनुभव, परमात्मा स्नेह, परमात्मा मदद, परमात्मा साथ, कोई अनुभव नहीं, क्योंकि वो कितना दूर है। तो पहली प्रत्यक्षता है भगवान की प्रत्यक्षता। सारे धर्म की आत्माएं जानेगी कि ये हमारा पिता है। सारे धर्म गुरु, सर्वधर्म नेता, धर्म स्थापक सब आएंगे, जीसस, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, मोहम्मद, इब्राहिम, सब आएंगे, सब जानेंगे कि यही है, यही है, यही है। चारों ओर गूंजेगा आवाज, कौन सा, मेरा बाबा आ गया। आएंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहली प्रत्यक्षता रिवेलेशन, द डिवाइन रिवेलेशन एक दिन होगा, सब आत्माओं को पता चलेगा। जो अब तुमने जाना है एक दिन सारी दुनिया जानेगी। जो गीत आज तुम्हारे हैं वो सारे गीत एक दिन विश्व के एक एक आत्मा के दिल पर होंगे। दूसरी प्रत्यक्षता है हमारी। सात प्रकार की प्रत्यक्षता में दूसरी प्रत्यक्षता है हम, हमारी प्रत्यक्षता। उसकी भी चर्चा हमने यहां पर एक बार की है, मनसा सेवा 65 में, बहुत पहले। हमारी भी सात रूपों में प्रत्यक्षता होगी, संसार की आत्माएं और हम यहां। हमको किस रूप में वो देखेंगे? सबसे पहला तो ज्योतिबिंदु, केवल आत्मा उनको दिखाई देगी, देह दिखाई ही नहीं देगा। खुद भी आत्मा महसूस करेंगे और आत्माएं देखेंगे कि ये है। दूसरा प्रकाश, लाइट, केवल लाइट दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लाइट के रूप में हमारी प्रत्यक्षता। तीसरा अल्लाह लोक, ये भगवान के बच्चे हैं, ये है जिन्होंने भगवान को पाया और हम नहीं पा सके, ये है जिन्होंने उसको जान लिया और हम नहीं जान सके। तुमने हमको क्यों नहीं बताया कमलेश भाई, तुम आ गए इधर और तुमने हमको क्यों नहीं बताया? हाँ कौन सी बस हम आए थे तुम्हारे, तुम कह देना फिर उनको, हम तो आए थे बस लेकर, तुम ही नहीं आए, हमने तो बुलाया था, फिर हम कह सकेंगे। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, हमने तो बहुत बुलाया था तुमको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, परंतु तुम आए नहीं। हम ऐसा कह देंगे, ठीक है ना? एरोप्लेन में पर्चे भी गिराए थे, क्या क्या नहीं किया था, तुम्हारे लिए कितना खर्चा किया था, एक एक लाख का, प्रदर्शनी लाखों करोड़ों खर्च कर दिए थे, फिर भी तुम नहीं आए। दूसरी प्रत्यक्षता है हमारी, और हमारी में सबसे पहला बिंदु दिखेगा, दूसरा लाइट दिखेगा, तीसरा अल्लाह लोक, भगवान के बच्चे, ऐसे आत्माएं जिन्होंने भगवान को पा लिया, सेल्फ गॉड रियलाइज्ड सोल्स। चौथा फरिश्ते। यहां बाबा ने कहा सभी आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे, सभी दूसरी धर्म की आत्माएं, हिंदू धर्म छोड़कर, क्रिश्चियंस, यहूदी, इस्लाम, मुख्य रूप से तीन इब्राहिमिक रिलीजन, ये तीनों ही फरिश्तों को मानते हैं। प्रवेशी नाम का पारसी धर्मों में एक फरिश्ता होता है प्रवेशी नाम का, वो कहते हैं कि वो फरिश्ता हमेशा हमारी रक्षा करता है। हर एक का अपना अपना एक प्रवेशी है जो कि रक्षा करता है। तो ऐसे कई सारे धर्म हैं जो फरिश्तों को मानने वाले हैं, बहाई फेथ, फरिश्तों को मानने वाला, तो वो आह्वान कर रहे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई यूअर एंजल, इस पर आर्टिकल्स है कि आप अपना एंजल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन है मेरे जीवन का जो निरंतर मेरी रक्षा करता है। कोई तो होगा, उसके नाम भी दिए हैं, बहुत बड़ा एंजलोलॉजी में चार्ट है, साइंस ऑफ एंजल्स, कौन सा एंजल क्या क्या करता है, उसके अलग अलग नाम, बहुत बड़ा ये है, वो शास्त्र है, फरिश्तों का शास्त्र, फरिश्ते कैसे होते हैं, नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसी उनकी भावनाएं हैं, संसार के प्रति क्या वो करते हैं, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। ऐसी स्टडी है, स्टडी ऑफ एंजल्स, एंजलोलॉजी। तो फरिश्ते के रूप में साक्षात्कार, संसार की आत्माएं देखेंगी कि यही है, यही है, यही है। इसलिए तुम जो जन्म लिया है दूसरे देशों में, गलती नहीं की है, लास्ट संडे के लास्ट संडे बाप ने तुमको वहां रखा है, क्योंकि वहां की आत्माओं को तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार होगा। अगला, इष्ट देव के रूप में साक्षात्कार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कब से पुकार रहे द्वापर से पुकार रहे, आ जाओ हे राम हे राम हे राम, आओ, पुकार ही पुकार रहे, हरे कृष्ण और हरे कृष्ण और हरे कृष्ण। उनका उनको फरिश्तों इष्ट देव के रूप में साक्षात्कार, जो राम का भक्त है उसे राम के रूप में, जो हनुमान का भक्त है उसे हनुमान के रूप में, जो गणेश का भक्त है, जो जिसकी पूजा करता है उसको उसी रूप में हम साक्षात्कार कराएंगे। वो हमारा चौथे नंबर, चौथा पांचवें नंबर का हम साक्षात्कार कराएंगे, फरिश्ता, और उसके बाद ये इष्ट देव के रूप में। अगला साक्षात्कार हमारे द्वारा बाप का साक्षात्कार, हम में उसको देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हमको नहीं देखेंगे, वो दिखाई देगा, शंकर में शिव दिखाई देगा, और इसी का प्रिंट उनके मन पर पड़ेगा और द्वापर से दोनों को एक कर देंगे, शंकर ही शिव है, यह साक्षात्कार। आत्मा ही परमात्मा है, जहां देखे वहां वही वही है, सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब जगह वही 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 है, सीइंग गॉड एवरीवेयर, सब जगह वो जो ओमनी प्रेजेंस जो है उसका, वो उसका साक्षात्कार, सब जगह वही 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 है। तो ये एक साक्षात्कार होगा। अगला साक्षात्कार हमसे सातवा और अंतिम, पूर्वज आत्माएं यही है, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त आत्माएं यही है, इन्हीं के द्वारा कल्याण होना है। ये सब सात प्रकार के हमारे द्वारा साक्षात्कार। तो पहला साक्षात्कार, पहली प्रत्यक्षता है भगवान की, दूसरी प्रत्यक्षता है हमारी, और हमारे में भी सात प्रकार, और अभी तीसरी प्रकार की प्रत्यक्षता, वो किसकी बताई, ब्राह्मण परिवार की प्रत्यक्षता, प्रभु परिवार की प्रत्यक्षता, संसार की आत्माओं को ये पता चलेगा कि ये वो आत्माएं हैं, ये सारी, ये वो परिवार है, ये भगवान का परिवार है। भगवान जब धरा पर आए तो उन्होंने जिस परिवार की स्थापना की वो ये परिवार है, और हम इस परिवार के भांति न बन पाए। परमात्मा की जो धाती थी, धरोहर, उसको हम यहां के भांति बनकर न ले पाए, यह दुख शायद उनको होगा। हम इस परिवार में जो अलौकिक सुख इन्होंने पाया वो हम न पा पाए, यह दुख। एक तरफ पा लेने का सुख हमें होगा, न पा लेने का दुख उनको होना होगा। अन पाया ही रह गया, अन मिला ही रह गया। अन पाया और अन मिला उनकी अवस्था होगी, अनऑब्टेन्ड, अनअकम्प्लिश्ड, इस परिवार का ही प्रत्यक्षता। चौथा इस यज्ञ की प्रत्यक्षता। परिवार और यज्ञ अंतर है। सबसे बड़ा यज्ञ जिसे स्वयं भगवान ने स्थापन किया और उस यज्ञ में सारे विश्व की आहुति डली जाएगी, वह यज्ञ, अंतिम यज्ञ, ऐसा यज्ञ कि उसके बाद और कोई यज्ञ नहीं होगा, ऐसा राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ, जो हम नहीं जान पाए, हम नहीं समझ पाए, हम नहीं देख पाए, ऐसा भी यज्ञ था। हम तो वही हवन करते बैठे, वही यज्ञ करते रहे, ऐसा भी कोई एक अदृश्य यज्ञ था, पता ही नहीं था। इस यज्ञ की प्रत्यक्षता होगी, अर्थात इस संस्था की प्रत्यक्षता। उसमें ही बोर्ड देखते हैं परंतु इंस्टीट्यूशन का नाम देखते हैं, यज्ञ छिपा है उसमें। यज्ञ अलग है, संस्था अलग है, थोड़ी बहुत उसमें भी अंतर है। जो ये जो दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्सेस, शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, सेंटर, ये संस्था। यज्ञ की कोई सीमा नहीं है, यज्ञ की कोई बाउंड्री नहीं है, यज्ञ की कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है कि ये यज्ञ है। यज्ञ वो सब है, एक एक यज्ञ हो, तुम एक एक ईंट हो यज्ञ की, एक एक ब्राह्मण यज्ञ है। यज्ञ दिखाई थोड़ी देता है, यज्ञ तो अदृश्य है। यज्ञ वो नियम है, यज्ञ वो मर्यादाएं है जो परमात्मा ने स्थापन की। तो यज्ञ की प्रत्यक्षता। अगला, यथार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता। यही संपूर्ण ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है, यही है, यही है और यही है। इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, मैं जो तुमको सुना रहा है, आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि मैंने तुमको जो सुना है 18वां अध्याय, बस इसी को ज्ञान जान। इसके अलावा संसार में जो कुछ है सब कुछ अज्ञान है। यही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूं। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड, सर्वे सर्वा, संपूर्ण जगत का मैं हूं। यह प्रत्यक्षता, इस ज्ञान की प्रत्यक्षता। इस ज्ञान के आगे कोई ज्ञान टिक नहीं सकेगा। इसमें आएगा प्राचीन राजयोग का ज्ञान, राजविद्या, राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम धम्म सुसुखम कर्तव्ययम। हे अर्जुन, यह ऐसा ज्ञान है जो मेरा दिया हुआ है, संपूर्ण सर्व प्राचीन राजविद्या है, सबसे गुह्य है, पवित्र को पवित्र करने वाला है। इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है संसार में। तो इस ज्ञान की प्रत्यक्षता। अगला, मधुबन भूमि की प्रत्यक्षता। क्या लोगों को पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा इस भूमि के बारे में, क्या होगा? लाइन तो अब भी लग गई है, तब कहा था 69 से पहले कि नीचे से लाइन, नीचे से तो अभी लाइन लग गई है, मुंबई से लाइन लगेगी, ये भी कहा एक मुरली में। और क्या होगा इस भूमि के बारे में प्रत्यक्षता? ये लाइट हाउस का रूप बन जाएगा, शीश महल बन जाएगा, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान बन जाएगा, जादू की नगरी बन जाएगा, और फरिश्तों की नगरी बन जाएगा, और स्वर्ग देखना हो तो स्वर्गाश्रम मधुबन बन जाएगा, वो तो अभी मधुबन है, और क्या बन जाएगा? सबको शफा मिल जाएगी, ऐसा हरिद्वार बन जाएगा। और अभी तो अभी भी है, लास्ट में क्या हो जाएगा, अभी जो है वो नहीं, लास्ट में क्या होगा, यही हरिद्वार है, ये प्रत्यक्षता होगी। असलम का स्थान यही है, उड़ती कला का एयरपोर्ट। शीतलता का झरना कौन सा है वैष्णवी बहन, याद है ना, मधुबन, सुनाया था यहाँ बैठकर। तब तेरे रेगिस्तान में यह शीतलता का झरना है मधुबन, मरुभूमि पर यह रसवंती है मधुबन। मंजू बहन, और जंगल में क्या है, महल, खुशी का महल है अरविंद भाई। तीनों के तीन टॉपिक थे मधुबन। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नात पाव तुम धारा। तुलसीदास लिखते हैं अयोध्या के बारे में कि ये जो भूमि है, धन्य है यह भूमि जहां पर हे रघुनाथ तुमने पैर धरा है। यहाँ का सब कुछ धन्य, वनपंत पहारा, सब कुछ, जहां जहां तुम्हारे, ये वो भूमि है जहां पर भगवान ने आकर कदम रखे है। पदचाप यहाँ पर आत्माओं ने उसकी सुनी है, पदक से उसकी पगधूली यहाँ उड़ी है, ये वो भूमि है। लोग यहाँ की भूमि ले जाते हैं घर में, अभी भी ले जाते हैं, मिट्टी क्या कहते हैं, फाउंडेशन लगाने के लिए। थोड़ी सी मिट्टी लेके जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से अभी लेके जाते हैं। तो इस भूमि की प्रत्यक्षता होगी कि यही वो भूमि है, यही परमात्मा अवतरण भूमि है, यही तपस्या भूमि है, तपो भूमि है, तपस्या कुंड है, शांति कुंड है, कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है, परमात्मा का आने का ये स्थान, चरित्र भूमि, मधुर भूमि, मनोरंजन भूमि, बेहद का एयरपोर्ट, सच्चा सच्चा हरिद्वार, सच्चा सच्चा ग्लोबल हॉस्पिटल, सच्चा सच्चा यही शांतिवन है, यही ज्ञान सरोवर है, यही दिलवाड़ा है, यही अचल घर है, यही बेहद का एयरपोर्ट, यही बेहद टॉप का स्थान है, यही गुरु शिखर है, यही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, यही ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर है, यही पांडव भवन है, यही ओम शांति भवन है, यही ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, यही शांति सरोवर है, यही ज्ञान मान सरोवर है, एयरपोर्ट बोला ना, यही बेहद का क्लब है, तपोवन, परिवर्तन भूमि, लैंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यही ब्यूटी पार्लर है, शीश महल, जादू की नगरी, ये सारा प्रत्यक्षता मधुबन की। और अंतिम प्रत्यक्षता सातवी, आत्माओं को अपनी अपनी प्रत्यक्षता होगी, आत्माओं को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। कल की मुरली, संडे की मुरली, तीन प्रकार के रियलाइजेशन, पहला मानव जीवन मूल्य, दूसरा मैं कौन, वहां पता चलेगा मैं आत्मा, और उसके भी आगे तीसरा रियलाइजेशन, मैं कौन सी आत्मा, मैं कौन सी आत्मा, इसकी भी प्रत्यक्षता होगी। तो ये सात प्रकार की अंत में प्रत्यक्षताएं होगी। क्यों होगी, क्योंकि ड्रामा एंड हो रहा है। किसके द्वारा होगी, साक्षात्कार के द्वारा होगी, विधि होगी साक्षात्कार, किन की होगी, इन सातों चीजों की। और कब होगी, अब ये अंतिम प्रश्न है, कब, जब तुम कहा टाइम, टाइम वो सब उत्तर नहीं बताओ, टाइम बताओ। अचानक होगी, अचानक। कब होगी प्रत्यक्षता, जब संपूर्ण बन जाओगे तो प्रत्यक्ष, नहीं टाइम, जब आकार के बाद प्रत्यक्षता होगी, पहले खून की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां बहेगी, पहले दुख के पहाड़ गिरेंगे, फिर सुख के पहाड़ गिरेंगे। दुख तो अभी आया ही नहीं है, बाबा ने कहा ये तुम्हारे छुटपुट, तुम्हारे जो दुख है बहुत ही एकदम चिल्लर है, ये तो रिहर्सल है, अभी तो बड़े बड़े दुख तो आने हैं, ये लिंबू टिंबू दुख तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे, तुम्हारे पावरफुल दुख तो अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले है। एक व्यक्ति ने ज्योतिषी को हाथ दिखाया और कहा कि बताओ जरा मेरे बारे में कुछ, उसने कहा छोड़ दो, जाने दो, क्या बताओ, नहीं बताओ, उसने कहा तुम सुन नहीं पाओगे, उस व्यक्ति का व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं बताओ बताओ। तो उसने कहा अगले 10 वर्ष के लिए तुम्हारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा आपदा ट्रेजिडी सब भरा है, क्या बताऊं, और इतना दुख तो मैंने किसी के हाथ में नहीं देखा, तुम पूछ रहे करके बता रहे हो, बता रहा हूँ। वो पूछता है और उसके बाद क्या, 10 साल का बताया ना ज्योतिषी का, उसके बाद क्या, तब तक तुमको आदत पड़ जाएगी। तो 7 प्रकार की प्रत्यक्षता दुखों को कई कारण थोड़ी लगते हैं दुखी होने को, तो दुखी तो व्यक्ति सुखों में भी हो सकता है, सुखी दुख का कारण बन सकता है, दुखी तो होने के लिए दुख मन की स्थिति है, उसका परिस्थितियों से और व्यक्तियों से और बाहर की चीजों से कोई संबंध नहीं है। तो पहली प्रत्यक्षता भगवान की प्रत्यक्षता, दूसरी प्रत्यक्षता हमारी, हमारे में भी 7 प्रकार, तीसरी प्रत्यक्षता ब्राह्मण परिवार, चौथी प्रत्यक्षता यज्ञ की प्रत्यक्षता, पांचवी प्रत्यक्षता मधुबन भूमि की प्रत्यक्षता, छठवी प्रत्यक्षता संपूर्ण यथार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता, परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्षता, 7वीं प्रत्यक्षता आत्माओं को अपनी अपनी प्रत्यक्षता। ओम शांति।